पिछले अध्याय में आपने देखा कि देवांश ने दिशा को शांत किया और उसके होंठों के निशान को मिटाया। इस अध्याय में रुद्र रूही को जबरदस्ती अंगूठी पहनाता है और उस पर अपना अधिकार जताता है। रूही विरोध करती है और गुस्से में प्रतिक्रिया देती है। अमन को मिशा के लिए सगाई की अंगूठी रखनी पड़ती है। रुद्र मिशा को इग्नोर करते हुए रूही की तलाश करता है। रूही और दिशा घर जाने के लिए निकलती हैं और अर्जुन उन्हें अनाथ आश्रम तक छोड़ने जाता है। चैप्टर 46। अब आगे। वही रूही दिशा के साथ अनाथ आश्रम के अंदर अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आती है। इस समय रूही ने अपनी सिंपल सी नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें वे काफी प्यारी लग रही थी। वही रूही को फ्रेश होकर आता देख दिशा भी फ्रेश होने चली जाती है। वही रूही जब दिशा को फ्रेश होने के लिए जाता हुआ देखती है तो वे रूम के बाहर कुछ बनाने के लिए चली जाती है। उसने यहाँ आने के लिए परी से झूठ तो बोल दिया था, मगर उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। वही कुछ देर में दिशा भी फ्रेश होकर अपनी सिंपल सी नाइटी पहन बाहर आ जाती है। तभी वहाँ दो प्लेट में रूही मैगी लेकर दिशा को देख कहती है, दी आओ, आपको भी भूख लगी होगी ना, जल्दी से मैगी खा लो फिर सोते हैं, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। रूही की बात सुनकर दिशा अपने बालों का जूड़ा बना रूही के पास आकर बैठ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुझे इतनी ही भूख लगी थी तो तू वहीं खा लेती, इतना टेस्टी टेस्टी खाना था वहां पर। दिशा की बात सुनकर रूही बोली, दी, मुझे वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वहां कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वहां नहीं खाया। रूही की बात सुनकर दिशा अब कुछ भी नहीं कहती और मैगी की प्लेट ले मैगी खाने लगती है। दिशा को मैगी खाते हुए देख रूही भी मैगी खाने लगती है। कुछ देर में दोनों मैगी खा लेती हैं और रूही दिशा से मैगी का प्लेट ले जैसे ही ट्रेले बर्तन रखने को जाने वाली होती है, वैसे ही दिशा की नज़र रूही के हाथ में पहनी हुई रिंग पर चली जाती है, जिसे देख दिशा रूही को रोकते हुए बोली, रूही, ये तेरी उंगली में रिंग कहाँ से आई? मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखी और ये रिंग भी काफी महंगी लग रही है। दिशा की बात सुनकर रूही के चेहरे पर घबराहट आ जाती है, लेकिन वे अपनी घबराहट छिपाते हुए दिशा की तरफ देख हल्की मुस्कान के साथ बोली, वे दी, ये रिंग ना आज ही मेरी एक दोस्त ने दी, वे घूमने गई थी, वहीं से लेकर आई, ज्यादा महंगी नहीं है ये। रूही की बात सुनकर दिशा हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देख रूही जल्दी से वहां से चली जाती है। बाहर आकर रूही एक गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बोली, आज उस डेविल की वजह से मुझे दी से झूठ बोलना पड़ा, ना वे ये रिंग मुझे पहनाता ना ही मुझे दी से झूठ बोलना पड़ता। इतना बोल वे गुस्से में ट्रे किचन में रखने चली जाती है। कुछ देर में वे वापस आती हैं और बिस्तर पर तुरंत लेट जाती है, जिसे देख दिशा भी रूही के बगल में सो जाती है। कुछ ही देर में दोनों नींद की आगोश में चली जाती हैं। अगली सुबह, सिंघानिया विला। आज सिंघानिया विला में सुबह सुबह ही काफी ज्यादा चहल पहल थी। सुमन, प्रीता, कामना, परी, अर्जुन आज सब जल्दी उठ गए थे और बाहर गार्डन में हल्दी की रस्म के लिए सारी तैयारियां करवा रहे थे। वहीं प्रीता और कामना एक जगह पर बैठे बैठे ही नौकरों को ऑर्डर देकर काम करवा रही थी। साथ ही कामना एक बाउल में रसगुल्ले ले उसे खा भी रही थी, जिसे देख अर्जुन भी कामना के पास आ उनके बाउल से रसगुल्ला निकाल खा लेता है, जिसे देख कामना गुस्से में बोली, नालायक कहीं का, अगर तुझे रसगुल्ले खाने ही थे तो तू अपने लिए दूसरी ले आता, तुझे मेरे बाउल में से रसगुल्ले लेने की क्या ही जरूरत थी। कामना की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए रसगुल्ले खाकर कामना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी बुआ, आपने सुना नहीं है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है और आप तो जानती ही हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर कामना हल्का सा मुस्कुराकर फिर थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लगा लिया मक्खन, तो जा आप काम कर। इतना बोल वे दोबारा रसगुल्ले खाने लगती हैं। वही सब ये देख मुस्कुरा देते हैं और वापस काम पर लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में, दिशा सुबह उठ जल्दी से फ्रेश हो नहा धोकर रेडी हो जाती है, फिर अपनी गुस्से भरी नजरों से रूही की तरफ देख अपनी तेज आवाज में लगभग रूही पर चिल्लाते हुए बोली, रूही, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, उठ जा, वरना इस बार मैं तेरे ऊपर सच में पानी डाल दूंगी, फिर मुझसे शिकायत मत करना। दिशा की गुस्से भरी आवाज सुन रूही ना चाहते हुए भी अपनी आंखें मलते हुए उठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार भी वे नहीं उठी तो सच में उसकी दिशा दी उसके ऊपर पानी डाल देंगी, इसलिए वे उठकर दिशा को देखती है। लेकिन दिशा को देख वे एकटक दिशा को देखती ही रह जाती है, क्योंकि दिशा येलो कलर के सिंपल सूट और लाल कलर के दुपट्टे में, बालों का पोनीटेल बनाए, बिना किसी मेकअप से बस हल्का सा होंठों पर लिप बाम लगाए काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही दिशा जब रूही को खुद को यूं देखता हुआ पाती है तो अपनी आईब्रो रेज करते हुए रूही से बोली, रूही, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? दिशा की बात सुनकर रूही बोली, दी, आपके चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा, पर आप आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अगर मैं लड़की की जगह लड़का होती ना तो मैं आपको देखते ही तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर आपसे तुरंत शादी कर लेती। रूही की बात सुनकर दिशा मुस्कुराते हुए कहती है, हो गया तेरा, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि कोई मुझसे शादी करने के लिए मरा जाए। अब जा, जल्दी तैयार हो जा, मैंने तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, हमें आज सिंघानिया विला जाना है। दिशा की बात सुनकर रूही परेशान होते हुए बोली, लेकिन दी हम सिंघानिया विला क्यों जा रहे हैं? रूही की बात सुनकर दिशा रूही को देखते हुए बोली, क्योंकि सर आज ऑफिस नहीं आएंगे और विला से ही सारे काम करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे विला में ही काम करने के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि कुछ देर में काम करके आ जाऊंगी, लेकिन तू सो रही थी और फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए सुमन आंटी ने मुझे कॉल करके तुझे अपने साथ लाने को बोला। मैंने उन्हें मना भी किया था पर वे नहीं मानी। उन्होंने कहा है अगर मैं तुझे लेकर नहीं आई तो वे मुझसे और तुझसे दोनों से नाराज हो जाएंगी, इसलिए जा अब जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि अगर मैं लेट हुई तो सर मुझे सजा भी दे सकते हैं। दिशा की बात सुनकर रूही बोली, दी आप जाओ ना, मेरा मन नहीं है जाने का, आप सुमन आंटी से कह देना कि मैं बाद में आ जाऊंगी। रूही की बात सुनकर दिशा रूही के गाल पर हाथ रखते हुए बोली,
क्या हुआ रूही, कोई बात है क्या जो तू मुझसे छिपा रही है? क्योंकि पहले तो तू खुद ही सिंघानिया विला जाने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू वहाँ नहीं जाना चाहती। देख कोई बात है तो मुझे बता दे, मैं तेरी हेल्प करूँगी। दिशा की बात सुनकर रूही की आंखों के सामने रुद्र की वे खतरनाक आंखें आ जाती है जो रूही को हमेशा डराने के लिए काफी रहता था।